नागपुर में हम लोग एक ग्रुप बना लिए है जिसका नाम है ज्योतिर्जिज्ञासा, और उसमें हम केवल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोनॉमर है, जियोलॉजिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, सब मिलके है एक ग्रुप बना के हम ये पुरानी हिस्ट्री को, हिस्टोरियंस है, ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके कारण ऐसा दिख रहा कि केवल अपनी हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजी फाइंडिंग्स में 3,500-4,000 साल तक ही सीमित है वैसी नहीं है, तो करीब करीब 12,000 साल पहले से एक हिस्ट्री है और उसकी एक लिंक हमने बना ली है। आर्कियोलॉजिकली सिर्फ अपन गौतम बुद्ध तक या मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक ही जा सकते हैं, बट एस्ट्रोनॉमिकली भौगोलिक जो घटना घटी उसके हिसाब से भी अपन देखा जाए, जैसे प्रलय है, ये है, तो अपन 12,000 साल की हिस्ट्री खोज रहे, तो ऐसा हमारा प्रयत्न चल रहा
जी।
उसके लिए हम एस्ट्रोनॉमी का उपयोग कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ।
ये बताइए कि आपने अटलांटिस शहर और हमारे जो पुराण हैं उनमें एक शहर का आपने कहा कि मिलता जुलता वर्णन है, हालांकि यहाँ श्रोताओं को बता दें कि ये दोनों ही ऐतिहासिक नहीं माने जाते, ये ज्यादा माइथोलॉजिकल क्षेत्र है, लेकिन क्योंकि समानता है तो इसके बारे में हमें बताएं।
हाँ, ये अटलांटिस शहर के बारे में, ये दक्षिण अमेरिका में ये शहर था और वो डूब गया था करीब करीब 10,000-12,000 साल पहले। का वर्णन अभी नहीं है, करीब करीब 3,000 साल पहले से प्लेटो ने वर्णन किया है उस शहर का, तो वही पुराना वर्णन यदि अपन देखते हैं 3,000 साल पहले का, तो वो वर्णन एक टिपिकल टाइप का है कि ये बहुत ही प्रगत शहर था और उस शहर का जो बाउंड्री था उसके ऊपर एक चकचक चकचक ऐसा ये था, कोई दिल था, ऐसा उनका वर्णन है कि कोई अंदर आ नहीं सकता था। तो फिर लोग, हम लोगों ने सोचा कि ऐसा 10,000-12,000 साल पहले पुराना शहर कौन सा हो सकता है, तो वैदिक पुराणों में एक बलि राजा था कि जिसको दक्षिण के तरफ धकेला गया था विष्णु के तरफ से, तो ये जो बलि राजा का शहर था वो शहर दक्षिण में था, और ये शहर जो था उसके पूरी सराउंडिंग में सुदर्शन चक्र जो था वो घूमता था टू प्रोटेक्ट, तो ये दोनों एक मेक से काफी मेल खाते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो अटलांटिक शहर सबमर्ज हो गया वो बलि राजा का ही शहर था, और उसके बाद में मेन ये था कि अटलांटिस शहर साधे एक समुन्द्र में सुनामी आया और डूब गया ऐसा नहीं था, तो पूरा वर्ल्ड वाइड एक प्रलय आया था डिल्यूज, और उसमें ये शहर डूब गया था, तो वो पूरा प्रलय से लेके अपन हिस्ट्री को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इधर वैदिक पुराण में मनु के वर्णन में भी प्रलय का वर्णन है, बाइबल में भी नोवा आर्च का वर्णन है
जी।
तो ये प्रलय से लेके अपन हिस्ट्री ढूंढ सकते हैं क्या, रामायण महाभारत लेके, और इसको कुछ सच्चाई निकाल सकते हैं क्या, ऐसा हमारी कोशिश चल रही है
जी। मतलब जो प्रलय जिसका वर्णन कथाओं के तौर पर है, आप लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था।
हाँ, क्योंकि क्या है, आइस एज था, तो आइस एज लास्ट आइस एज 14,000 साल पहले एंड हुआ, तो एकदम पूरी दुनिया भर जो बर्फ था वो पिघलने लगा, और पॉसिबिलिटी है कि 12,000 साल पहले ऐसा प्रलय हुआ होगा
जी।
तो जिसमें पुरानी सिविलाइजेशन करीब करीब सबमर्ज हो गई
जी,
और उसका वर्णन ऐसा है कि ये सब लोग, मनु जो था उसने अपनी एक नौका में बैठा के 300-400-500 लोगों को बैठा के उनको बचा लिया
जी।
और वो आके हिमालय के वहाँ आके पानी इतना था कि वहाँ वो रुक गए, और वहां से पानी जब रिसाइड हो गया तो वो लोग वही रहने लगे, और वो मनु के वंश में ही इश्वांकु है जो दूसरा राजा, और राम का जो वर्णन है, राम 70 पीढ़ी इश्वांकु के बाद राम का जन्म हुआ, और ये 70 राजाओं के नाम भी अपने पास आज मौजूद है, तो इसके हिसाब से अपन रामायण काल तक भी पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, ये बताइए डॉक्टर वजलवार की, अब जो बहुत ही एक रोमांचक मुद्दा है उस पर आते हैं कि आप लोगों का एक इस पर भी शोध चल रहा है कि क्या जो राम जी हैं या जो दूसरे इस तरह के फिगर्स हैं, इंडियन हिस्ट्री कह लीजिए या माइथोलॉजी कह लीजिए, तो उनके उनकी जो पत्रियां हैं उनके वर्णन दिए हुए, जैसे वाल्मीकि रामायण में राम जी की पत्री का वर्णन दिया हुआ है जब वो पैदा हुए थे, और उसके आधार पर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो असल में जन्म कब हुआ था वो निकालने की कोशिश की जाए।
उसीलिए जैसा ये मैंने बोला कि 70 पीढ़ी बाद में, यानी एक पीढ़ी जो बोले तो 40 या 50 साल की पकड़ी, तो 3,500-4,000 साल बाद में, यानी करीब करीब 8,000 साल, यानी ईस्वी सन पूर्व 6,000 के आसपास कहीं भी हमने उसकी लिमिट फिक्स किया कि राम का जन्म उस समय होगा। फिर उसके हमने खगोल और भूगोल दोनों देखने की कोशिश की, तो ये जो प्राण की पत्रिका है उसका वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्ट वर्णन है। तो फिर मैंने अभी एक नया सॉफ्टवेयर है कि जिसमें अपन यदि सब इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, जैसे चैत्र शुद्ध नवमी का जन्म है, प्राण की पत्रिका में 5 ग्रह उच्च राशि में बैठे हैं, ऐसे प्रकार का जो राम का वर्णन है पूरा, महीना है चैत्र, वो सब हमने डाला इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद वो सॉफ्टवेयर ने हमारे को पूरा का पूरा राम का जन्म निकाल के दिया। तो करीब करीब 7,200, अब थोड़े थोड़े सॉफ्टवेयर में फर्क है, बट इट इज श्योर दैट इट वॉज बिटवीन 7,000 to 8,000 ईयर्स कि राम, यानी ये जो पत्रिका वर्णन है, ऐसा प्रकार का पुरुष वो इतने सालों में जरूर हुआ है। अच्छा, उसका दूसरा भौगोलिक ये है कि नासा ने जो ब्रिज देखा है और आज वो वर्णन किया है कि लंका से लेके वहां तक ब्रिज है, वो ब्रिज का जो तो ये है, वो ब्रिज उस समय में इतना ऊपर था ताकि उनको ब्रिज करके जाना आसान था। आज इसके ऊपर करीब करीब 3 मीटर पानी है, लेकिन यदि अपन ओशनोग्राफी देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि करीब करीब 7,000 से 8,000 पूर्व वहां पर पानी बहुत कम था
जी।
तो इस टाइप से केवल खगोल नहीं, केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं, केवल एस्ट्रोनॉमी नहीं, ओशनोग्राफी और सबकी मदद से अपन इस पे पहुंच सकते हैं कि करीब करीब 7,000 से 7,500 पूर्व, यानी इसी से 5,200 to 2,500 ऐसा राम का जन्म हुआ है
जी।
तो वो लिंक जुड़ती है, पहला जो है प्रलय, उसके बाद सरस्वती का जो बहना था भारत भर में, तो उसमें वेदों का संस्कृति थी, और उसके बाद में राम था क्योंकि राम उन्हीं वंशजों में था। तो इस तरह का से अपन सब बाजू से देखते हैं तो राम का अपन जरूर से जरूर जन्म निकाल सकते हैं कि ऐसे टाइप का पुरुष 7,000 से 8,000 साल के पूर्व जरूर हुआ है
जी। और ये बताइए कि इससे आपने महाभारत के कुछ किरदारों के भी जो जन्म है उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की है।
और रामायण के बाद महाभारत आता है, क्योंकि रामायण के करीब करीब 2000 साल बाद में महाभारत हुआ था, क्योंकि उसमें भी राम के करीब करीब 40वीं पीढ़ी में जो एक राजा था राम की पीढ़ी में, वही महाभारत में युद्ध में था कौरवों के तरफ से। तो इसका मतलब है कि करीब करीब 2000 साल बाद महाभारत हुआ है। तो महाभारत में तो करीब करीब 100 जगह पे स्काई पोजीशन दी है, पूरा युद्ध जो है युद्ध के समय पूरी स्काई पोजीशन दिया है, तो काफी जगह पे स्काई पोजीशंस है, वो स्काई पोजीशंस भी हमने टैली किया है, और वो स्काई पोजीशन से महाभारत का समय भी करीब करीब रामायण से 1,500-2,000 साल बाद में निकलता है। अब उसके डिटेलिंग में हमारा काम चल ही रहा, वी कैन रीच द डेट्स ऑल्सो
जी। मतलब तो आपके अनुसार जो राम जी का जन्म है वो कथित रूप से करीब 7,000 साल पहले, और उसके 7,200-2,500, और महाभारत उसके 2,000 साल बाद, मतलब आप कह रहे हैं 5,000। और जो वैदिक जो संस्कृति है हमारी आपके शोध के अनुसार
रामायण के पहले,
अच्छा रामायण के पहले
भी है, करीब करीब 9,000 साल पहले, और प्रलय करीब करीब 12,000 साल पहले।
डॉक्टर वजलवार ये बताइए कि आपने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बताइए ये क्या एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है ज्योतिष विद्या का, या ये एस्ट्रोनॉमी का सॉफ्टवेयर है जहां पर वाकई जो पोजीशन है स्टार पोजीशन या ग्रहों की जो स्थिति है वो दिखाने वाला सॉफ्टवेयर है?
नहीं नहीं, ये साइबर स्काई करके सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रोनॉमी का सॉफ्टवेयर है, इट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर। इसमें 15,000 साल तक अपन पीछे कोई भी डेट डाल दो तो सिर्फ मैप ऑफ द स्काई आता, उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, वो सॉफ्टवेयर एस्ट्रोनॉमी का है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो पत्री में सॉफ्टवेयर ये लिखे रहे थे मैप ऑफ द स्काई, वो हम इसको टैली कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर से, इट इज नॉट एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर विच आई एम यूजिंग फॉर फाइंडिंग आउट द डेट।
अच्छा डॉक्टर वजलवार ये बताइए कि आपने कहा कि आप एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपने जो ग्रह दशाएं डाली हैं उसके हिसाब से आपको एक आसमान का चार्ट है वो मिला है, लेकिन ये बताइए कि क्या ये जो चार्ट है या क्या जो ग्रहों की स्थिति होती है क्या वो रिपीट कर सकती है क्या, या एक टाइम पे जैसी स्थिति होती है वो बस एक ही बार आती है?
नहीं नहीं, ग्रह की स्थिति जो पूरा सर्कल है वो 26,000 साल का है, तो 26,000 साल के पहले, जैसा राम का जन्म हमने बोला 7,200 है, तो शायद है उसको 26,000 साल पहले यानी 33,000-34,000 साल पहले भी उस टाइप की ग्रह स्थिति आकाश में रह सकती है। बट उसमें एक ही है कि आज जो मानव वंश का जो अभ्यास चल रहा हमारे साथ, वैसे भी लोग है, उनका सबका ये कहना है कि 33 या 35,000 साल पहले रामायण में जो वर्णन किया राम है जितना प्रगत आदमी दिखाया है, धनुष बाण, उसका रहने का रहन सहन, वैसा 35,000 साल पहले कोई भी नहीं था मानव। तो इसलिए यही साइकिल में राम हुआ है। तो और दूसरे भी जो रेफरेंसेस मैंने बोला, लंका का पानी और ये सब, वो यदि अपन देखते हैं तो वी कैन रीच द कंक्लूजन कि ये 7,200-7,300 यही साल करेक्ट है।
अच्छा डॉक्टर वजलवार, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो पत्री होती है उसमें जो असल में क्या जो ग्रहों की स्थिति होती है या जो नक्षत्रों की स्थिति होती है आसमान में, क्या वो असली जो आसमान में स्थिति होती है क्या उसको दर्शाती है पत्री में?
पत्री यानी इट इज अ मैप ऑफ द स्काई, आपके जन्म के समय का मैप रहता है
जी।
और ये जो मैंने सॉफ्टवेयर लाया है इसमें मेरे को 15,000 साल पहले तक कोई भी दिन मैं सॉफ्टवेयर में डाल दूं तो उस दिन का स्काई मेरे को दिख जाता है कंप्यूटर पे
जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं डॉक्टर वजलवार, कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि नहीं इसमें कोई तथ्य ही नहीं है, कि पथरी वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो विज्ञान नहीं है और इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, एक्चुअली इसके बारे में मेरा पूरा रिसर्च होके पीएचडी हुआ है, तो वो चीज तो पहले ही मैंने स्पष्ट की है, बट उसके अलावा इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चलते रहता है, पढ़ाई कभी बंद नहीं होती। जो आदमी का प्रोसेस रुक जाए वो कुछ भी नहीं कर सकता। इवन साइंस में भी डेवलपमेंट चल रही है, 2000 साल पहले का साइंस और आज के साइंस में भी फर्क है
जी, बिल्कुल।
तो हर चीज में डिफरेंस आते जाएगा, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग ऑन ए साइंटिफिक रूट।
लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये जानना चाहा कि आखिर वैज्ञानिक स्तर पर ऐसा संभव है भी या नहीं। यही जानने के लिए हमने ये सवाल भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के आर्किटेक्ट माने जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर से पूछा।
विज्ञान के दौर से मैं जब इसका अभ्यास करने लगा था कि हमारा प्राचीनतम विज्ञान है, जो वेदों में विज्ञान है, जो हमने उसका अभ्यास करते हुए लगता है कि एक वेदों का एक अंग रहा है, उसको वेदांग बोला है। वेदांग यानी ज्योतिष शास्त्र जो है, ये वेदांग वेदों का एक अंग रहा है। जब सुपर कंप्यूटर तैयार होने लगा था तब सुपर कंप्यूटर का एक एडवांटेज है कि हम वक्त में आगे भी जा सकते हैं और वक्त में पीछे भी जा सकते, कई हजारों साल पीछे जाके हम देख सकते हैं, क्योंकि उसके कंप्यूटर मॉडल्स जो हमारे तारों के ग्रहों के कंप्यूटर मॉडल जब बन जाएंगे, अभी बन गए, तो हमको देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो तारों की, ग्रहों की, हमारे राशि की, और हमको पता चल जाए तो हम देख सकते कि पीछे की उस टाइम का वक्त क्या हो सकता है ये। और हमारे रामायण हो या कई ग्रंथ हो, रामायण महाभारत है, इसमें उस वक्त की स्थिति बताई गई थी कि राम का जब जन्म हुआ था तो ये तारा इसमें था, ये राशि थी, ये हो सकता था, ये था, उसका ऐसा उसका वर्णन दिया है। तो ये हमारा बड़ा मुझे एक रेफरेंस हो सकता है, और उस वर्णन के दृष्टि से हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशन करके, सुपर कंप्यूटर पे सिमुलेशन करके जो सॉफ्टवेयर बने हैं अभी, वो भी जो उपलब्ध है, कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, तो हम देख सकते हैं कि उस टाइम की जो स्थिति, आकाश की स्थिति, और हमारे रामायण में बताई गई है कि राम का जन्म हुआ है तो उस टाइम स्थिति ऐसी थी, तो हम देख सकते हैं कि इसमें कई कितने साल पीछे कौन सा वक्त था वो हम देख सकते हैं। तो आज आपने बताया कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये शक्य है, और क्या ऐसा, तो ये शक्य है क्योंकि उसकी स्थिति हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। महाभारत की जो युद्ध हुआ था उसकी स्थिति क्या थी, और भीष्म पर्व में भीष्म कहाँ कब बोल रहे थे, ऐसी स्थिति हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है, तो उस अनुसार हम उसकी डेट निश्चित कर सकते हैं। मेरा आंसर ये है, ये जरूर पॉसिबल है। इस समय मैं फल ज्योतिष की बात नहीं कर रहे, हम उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं, उसके वक्त की बात कर रहे हैं
जी। मतलब आपकी ज्योतिष विद्या से भविष्य देखा जा सकता है, नहीं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो चार्ट में ग्रहों की दशा की बात कर रहे हैं आपके अनुसार।
भारत में ये जो शास्त्र है, जो ज्योतिष विज्ञान शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, उसमें कई डेवलपमेंट हुई, वेदों में तो हुई थी तो उसके बाद, लेकिन हमारे आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, इनमें हम देखते हैं कि ये पूरा पंचांग जो हम बात करते हैं, ये बड़े बड़े एक बड़ा मैथमेटिकल मॉडल है, ये आप लोग कई लोग समझते नहीं, ये इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल है, अच्छा करेक्ट मैथमेटिकल मॉडल, और कैसा किया गया है, एकदम आश्चर्यकारक उसमें प्रोग्रेस हुई थी।
एक आखिरी सवाल डॉक्टर भटकर आपसे, कि कई लोग हैं जो कहते हैं कि ज्योतिष विद्या बिल्कुल बकवास हो सकती है या साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं कि ज्योतिष विद्या बिल्कुल उसमें कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल अंधविश्वास है।
हमारी जो पत्री रखी जाती है कि जो हमारी कुंडली हम सामने रखते हैं, तब पहली बात आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, एक दूसरा प्रश्न है कि कब हुआ था, वक्त क्या, कौन सा वक्त था, उसके अनुसार हम जितना एक्यूरेट हम बता सके वो कुंडली रखी जाती है। वो आकाश की पोजीशन क्या थी, कौन से तारे, कौन से ग्रह, कौन सा राशि, कौन से नक्षत्र, उसकी पोजीशन मानी जाती है और बाद में उसका प्रेडिक्शन शुरू होता है। एक तो गणित है और ये विद्या काफी डेवलप हो चुकी है, उसे कई मॉडल्स भी है, तो मैं इसे कंप्यूटर मॉडल्स के मैंने देखता था। आज तो सभी कुंडली कंप्यूटर पे निकाली जाती है, हाँ उसके ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भविष्य क्या होगा, ये बता सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न हो सकता है, हाँ ये प्रश्न हो सकता है, मानता हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बकवास है, ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक मैथमेटिकल मॉडल है। आज भी विज्ञान में ऐसे मॉडल्स के आधार ही सब कुछ बताया जाता है, मॉडल तैयार करना यही विज्ञान है एक प्रकार का, मानता हूँ। जो वैज्ञानिक बोलते हैं बकवास है वगैरह, उन्होंने इनका अभ्यास नहीं किया होता है, अभ्यास बिल्कुल किया नहीं होता है उन्होंने, जैसे कि विज्ञान की भूमिका यही होनी चाहिए कि पूरा अभ्यास होना चाहिए और ये अभ्यास अधिकारी लोगों से करना चाहिए, अधिकारी व्यक्ति से के साथ गुरु समझ पूरा समझ के अच्छे प्रामाणिक ग्रंथ अभ्यास करके बाद में कोई निर्णय निष्कर्ष उसमें डालना चाहिए।